पिछले कई दिनों से रामायण की कथा चल रही थी, लेकिन रामनवमी के दिन राम कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हरि कथा राम कथा के लिए कोई अंत नहीं होता है। अनंत शेष अनादि काल से बोले आ रहे हैं और अनंत काल तक बोलते रहेंगे, इसलिए उनका नाम भी है अनंत शेष। तो इस तरह से राम कथा के प्रवाह में अभी आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, इसमें से और थोड़ी कथा आज करेंगे। अभी कथा यहां तक पहुंची है कि वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से रामलीला संक्षेप में सुन ली। तत्पश्चात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देव स्वयं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए तमसा नदी के तट पर, और वहां आशीर्वाद दिया वाल्मीकि मुनि को कि आप ये रामायण की कथा बहुत सुंदर ढंग से लिख पाओगे और मेरी कृपा से तुम्हें वो दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे जिसकी वजह से आप सारी रामलीला का दर्शन कर पाओगे। एक जगह इधर आपके आश्रम में बैठे हुए आप सारे रामलीला का दर्शन कर पाओगे। तो जब वाल्मीकि मुनि ध्यान में बैठे थे तो उस समय वाल्मीकि मुनि को सारे रामलीलाओं का दर्शन हुआ, मानो ऐसे कि ये लीलाएं पूरी तरह से उनके आंखों के सामने साक्षात हो रही हैं। और फिर वाल्मीकि मुनि ने इस सारे कथा की रचना एक अमुक प्रकार के श्लोक में की, जो कि अनायास उनके मुख से निकल आई थी दो पक्षियों के वध के देखने पर। और ये श्लोक भी ब्रह्मदेव की कृपा से सरस्वती देवी ने उनके मुख से बोली थी। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की और फिर सोचने लगे कि कौन ऐसे योग्य व्यक्ति है जिसको कि मैं ये रामायण सुना सकता हूं, जो कि इस रामायण को कंठस्थ कर सकता है और फिर अलग अलग जगह जाकर कथा कर सकता है। और ठीक उसी समय उनके आंखों से सामने से लव और कुश दो सीताराम के, श्री सीता देवी और प्रभु रामचंद्र जी के दो जुड़वे बेटे, वो सामने से आए। सीता देवी जब दूसरी बार वनवास में गई तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वो रहती थी और वहां पे लव और कुश बड़े हुए थे, इसलिए वाल्मीकि मुनि लव कुश के लिए पिता के समान भी थे और गुरु भी थे। तो इस तरह से जब लव कुश सामने आए तो वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि यही दो सही व्यक्ति हैं जिनको मैं रामायण सिखा सकता हूं और जो गंधर्व विद्या अर्थात संगीत में भी विशारद हैं और इस तरह से बहुत मधुर स्वर में इस रामायण का गीत वो जगह जगह प्रांत प्रांत में जाकर गाएंगे और प्रभु रामचंद्र जी कथा का प्रचार करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सिखाया लव और कुश को और लव और कुश ने इस कथा को तुरंत कंठस्थ कर दिया। ये है उस काल की काल का प्रभाव कि एक बार सारी कथा सुनने पर उनको सारी कथा कंठस्थ हो गई। विद्यार्थी जानते हैं परीक्षा के लिए कितना पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ने से परीक्षा में बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं। या हम कितने भक्त भी कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन 5 मिनट बाद भूल जाते हैं, लेकिन लव कुश के साथ उस त्रेता युग के समय में ऐसा नहीं हुआ। उस काल में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, जो भी सुनते थे याद रह जाता था। इस तरह से लव और कुश शहर शहर में प्रांत प्रांत में जाकर रामायण की कथा करते थे, और एक बार जब वो अयोध्या नगरी के सड़कों पर राम कथा करते करते चल रहे थे, टहल रहे थे, तो इस मधुर वाणी को सुनकर श्री राम स्वयं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन दो बालकों को अपने दरबार में बुलाया और ये रामायण की कथा कहने के लिए निवेदन किया। श्री राम खुद पहचान नहीं पाए थे कि ये लव कुश दोनों इनके ही बेटे हैं। तो जब इन्होंने कथा आरंभ की तो सारे मंत्री और सारे जो उपस्थित राम को दशरथ महाराज के कुल के जो भी निवासी थे, यहां तक सारे कुल गुरु ब्राह्मण सब आकर ये राम कथा को सुनने लगे, बड़े मग्न हो गए। लव कुश ने कथा आरंभ की और सबसे पहले अयोध्या नगरी का वर्णन किया और अयोध्या नगरी की महानता का वर्णन किया, कितना सुंदर था, कितना महान था, कितना शक्तिशाली था, और फिर अयोध्या नगरी के निवासी उनकी महिमा का वर्णन किया, उनके कितने गुण अच्छे थे। और इस तरह से करते करते अभी कथा यहां तक पहुंची है कि लव और कुश दशरथ महाराज के दरबार का वर्णन कर रहे हैं, उनके मंत्री उपदेशक और जो कुलगुरु इत्यादि वो कैसे थे इनका वर्णन करते हैं, और आगे चल के दशरथ महाराज की हृदय में क्या इच्छा उत्पन्न हुई और इस इच्छा के पूर्ति के लिए उन्होंने क्या उपाय निकाला और फिर ये उपाय सफल हुआ या नहीं हुआ, ये थोड़ा बहुत आज हम चर्चा करेंगे। वैसे वैदिक काल में दो प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। एक प्रकार के मंत्री उनको अमात्य कहते थे। ये अमात्य जो होते थे ये राजा को मार्गदर्शन देते थे, खास करके राज कारोबार चलाने में और खास करके आर्थिक चीजों के बारे में। और दूसरे जो होते थे उनको मंत्री कहते थे, और ये मंत्री ज्यादातर ऋषि मुनि होते थे। तो इस तरह से दशरथ महाराज के दरबार में ऐसे कई योग्य सर्वगुण संपन्न मंत्री और उपदेशक हुआ करते थे। आठ जो अमात्य थे उनके नाम ऐसे रामायण में बताए गए हैं, धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। सुमंत्र का नाम आप सबने सुना है क्योंकि सुमंत्र श्री राम के सारथी थे जब वो वनवास के लिए गए। सुमंत्री थे जो कि प्रभु रामचंद्र जी को गंगा के तट तक श्रृंगवेरपुर तक छोड़कर वापस लौट कर आए और उन्होंने खबर पहुंचाई दशरथ महाराज को और अयोध्या के निवासियों को कि श्री रामचंद्र अभी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और ये सारे मंत्री श्री दशरथ महाराज के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते थे। उनको निर्णय कैसे लेना है ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था। जो बातें होती थी उनको अच्छी तरह से नाप तोल कर वो सही निर्णय तक पहुंच सकते थे, ये इनकी क्षमता थी। और इनके अलावा ऐसे भी कई उपदेशक थे जिनको मंत्री कहते थे, और इनमें से प्रमुख थे वशिष्ठ मुनि। लेकिन वशिष्ठ मुनि के अलावा भी और ऐसे कई योग्य ऋषि मुनि थे, जैसे कि काश्यप मुनि जो कि कश्यप मुनि के पुत्र थे, इसके बाद में मार्कंडेय ऋषि, दीर्घजीवी मार्कंडेय ऋषि, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कात्यायन, एक और ऋषि थे जिनका नाम था जाबाली। इस तरह से कई बहुत सारे प्रसिद्ध ऋषि मुनि महाराज दशरथ के दरबार में थे और वो मार्गदर्शन करते थे महाराज दशरथ को। तो आदर्श समाज कैसे है ये हम महाराज दशरथ के दरबार से और अयोध्या नगरी के परिस्थिति से हम समझ सकते हैं। राजा दशरथ खुद इतने योग्य थे लेकिन फिर भी हमेशा अपने मंत्रियों से, उपदेशकों से, ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों से सलाह लेते थे कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। कभी घमंड के वजह से ये नहीं सोचते थे कि मुझे सब कुछ मालूम है। हालांकि वो इतने योग्य थे, शास्त्रज्ञ थे, हर दृष्टि से वो योग्य थे, लेकिन फिर भी हमेशा ब्राह्मणों के, ऋषि मुनि के अधीन रहते थे। तो ये जो मंत्री थे और अमात्य थे इनके गुणों का वर्णन किया गया है कि ये सारे मंत्री बड़े विद्वान थे और विद्वान होने के बावजूद भी नम्र थे। अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कभी करना नहीं चाहते थे अपने अहंकार की वजह, अपने अहंकार के लिए। हमेशा नम्र रहकर राजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए काम करते थे। उनमें से ऐसे कोई भी अमात्य मंत्री इत्यादि नहीं था जो कि स्वार्थी था। हमेशा वो प्रसन्न चित्त से, हसमुख चेहरे से बोलते थे। गलती से भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए या क्रोध में वो गुस्सा नहीं होते, या वो जब कोई उनको अपमान करता था, अगर ऐसे होता भी था तो फिर भी वो क्रोधित नहीं होते थे। हमेशा हंसते हुए ही बात करते थे। देखिए मंत्री को कैसे होना चाहिए, ये यहां वर्णन है। हाँ, हम अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं मंत्री हंसते हुए तस्वीर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन फिर पीछे पीछे और कितना वो काम करते हैं, क्या करते हैं, वो प्रजा को पता नहीं चलता है। और किस तरह से प्रजा की सेवा और राज्य की सेवा करने की बजाय किस तरह से वास्तव में अपनी सेवा करते हैं और प्रजा को अपनी सेवा में लगाते हैं। प्रजा जो कड़ी परिश्रम करके अपने मेहनत का फल कर के रूप में देती है, उस कर का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए प्रयोग करने के बजाय स्वतः के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। तो आजकल उस जमाने के जो मंत्री थे उनके क्या गुण थे, ये जानने से ये हमें कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। अगर आप में से कोई इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं या होना चाहते हैं तो आप खास करके इसे सुन सकते हैं, और आप अगर नहीं भी खड़े होना चाहते हैं तो फिर भी सुन लेना अच्छा है, ताकि कोई हमें मंत्री अगर मिल जाए तो हम उनको बता सके कि वाल्मीकि रामायण में मंत्री कैसे हुआ करते थे। तो फिर वाल्मीकि जी बताते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं थी राज्य में जो उनको नहीं मालूम था। उनके जासूस सब जगह फैले हुए थे और घर घर में क्या चलता था और गली गली में क्या होता था उनको मालूम पड़ता था। अगर कोई भी दुखी है तो उनको पता चल जाता था। लेकिन ऐसे जासूसों से जो ज्ञान मिलता था उनको, वो कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। ऐसे नहीं कि वो छुपा छुपी कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और फिर कुछ ऐसा उल्टा उसका प्रयोग करें, नहीं। हमेशा जनता के कल्याण के लिए ये कार्य करते थे, ताकि कोई बुरा किसी का न हो। अगर कोई बुरी चीज होने वाली है तो किस तरह से उसको समय में उसको टाल दिया जाए, या कोई प्रजा अगर दुखी हो तो कैसे उनका दुख का निवारण किया जाए। इस तरह से जो मंत्री हुआ करते थे, इनके जासूस सब जगह थे और इसलिए उनको सब कुछ मालूम हुआ करता था। और वो दंड देते थे हर एक गुनहगार को। अगर कोई गलती करता था तो चूकते नहीं थे दंड देने में, भले वो अपने पुत्र क्यों न हो। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि कई बार ऐसे भी हुआ कि ये मंत्रियों के पुत्र भी दोषी थे, तो इन मंत्रियों ने उनको छोड़ा नहीं, उनको सख्त से सख्त दंड दिया। ये भी हमारे माननीय और प्रिय नेताओं को श्रवण करने योग्य है कि वास्तव में ऐसा नहीं कि कोई हमारा पुत्र हुआ, हमारे कोई रिश्तेदार हुए तो हम उनको किस तरह से, वो गलती करेंगे भी तो उसको छुपा कर उसको साइड में करें ताकि किसी को पता नहीं चले कि मेरे बच्चे ने, लड़के ने क्या गलत काम किया है। भारतवर्ष के एक नेता ने बहुत भ्रष्टाचार किया था, लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे और भांडा जब फूट गया, अखबार में सारी बात जब आ गई, उनको गिरफ्तार किया गया। मामला तो अदालत में चलता रहा कई सालों से, अभी शायद वो रिहा हो गए हैं, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन किसी ने उनको प्रश्न पूछा कि क्या ये सही है कि आपने आपके रिश्तेदारों को गलत तरह से फायदा कराया, क्योंकि आप वो पद में थे इसलिए आपने उनको अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, ये किया, और अलग अलग तरह से आपके पद का फायदा उठाकर उनको आपने फायदा दिया। तो उन्होंने, उनका जवाब क्या था, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं ऐसा करूंगा तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार को करूंगा, ये उसका जवाब था। तो देखिए ये है आजकल के मंत्री, मतलब वो कहना चाहते हैं ये पद का और क्या दूसरा काम हो सकता है। कहने का मतलब ये था कि ये पद तो इसलिए मुझे मिला है कि ये सब मैं काम करूं। अब ये सब प्रश्न भला पूछने की बातें हैं। लेकिन दशरथ महाराज के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे वो ऐसे नहीं थे। अगर अपने पुत्र को भी दोषी ढूंढते थे तो उनको सख्त से सख्त दंड देते थे, और किसी को भी दंड देते थे तो अच्छी तरह से नाप तोल करके, सोच मोच कर अच्छी तरह से दंड देते थे। उस जमाने में ऐसे नेताओं के मंत्रियों के हृदय इतने शुद्ध हुआ करते थे तो इनकी दृष्टि ही बिल्कुल तेज हुआ करती थी, एक्सरे दृष्टि। एक्सरे मालूम है ना आपको क्या है? वो आप जब हड्डियों का फोटो लेने जाते हैं अस्पताल में, तो क्या होता है कि आपके शरीर के भीतर जो है हड्डी की हड्डी में क्या हालत है वो उस मशीन से दिखाई पड़ती है, हमें इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसी तरह से वो मंत्री इतने तेज दृष्टि के थे कि तुरंत वो किसी के हृदय में देखकर उनको समझ में आता था कि ये चोर है कि नहीं है, इसने गलती की है कि नहीं की है। क्योंकि सामने से आकर भला कोई कहे मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप है, तो तुरंत उसके आंखों से उसके हृदय में भीतर जाकर तुरंत उनको पता चलता था। और वो बुद्धि भी थी उनको, उनको अच्छी तरह से प्रश्न पूछकर वो सत्य को बाहर निकालते थे। तो इस तरह से सबसे पहले किसी दोषी व्यक्ति को वो छोड़ते नहीं थे और किसी मासूम व्यक्ति को दंड नहीं देते थे। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग जो दोषी हैं वो छूट जाते हैं और जो लोग कभी कभी मासूम हैं उनको जेल में जाना पड़ता है। तो थोड़े दिन पहले अखबार में हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति कई सालों तक जेल में भीतर रहा, बंद रहा, और बाद में लोगों को पता चला कि वास्तव में इसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति था, तो बेचारे इसको अंदर कर दिया था और वो अंदर जेल में रहा कई सालों तक। और जब तक बात बाहर आई तो बेचारा वो दूसरा सच्चा जो जिसने कानून तोड़ा था वो पता नहीं कहां चला गया था। तो दशरथ महाराज के राज्य में ऐसा नहीं चलता था, दंड सही आदमी को दिया जाता था जो वास्तव में दोषी था। और जो व्यक्ति दंडनीय था उसके धन संपत्ति को सब कुछ देखकर वो दंड देते थे। अगर कोई गरीब था तो एक प्रकार का दंड देते थे, अमीर था तो दूसरे प्रकार का दंड देते थे, और दोष की गहराई कितनी है ये भी सोच समझकर दंड देते थे। जिस चीज को दंड देना है उसको देते ही रहते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि करुणा की भावना बहुत गलत हो गई है। कोई खूनी भी होता है तो इस तरह से उसको छोड़ देते हैं, सोचते हो कि अभी आजकल का समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और मृत्यु दंड देना अभी ये उचित नहीं है। ये नई धारणाएं सब आ रही हैं। तो दशरथ महाराज के मंत्री बिल्कुल शास्त्रों के आधार से चलते थे, मनुसंहिता, मनुस्मृति इत्यादि धर्म शास्त्रों में जो बताया गया है उन शास्त्रों के आधार से वो राज्य को चलाते थे। इसलिए क्योंकि ये मंत्री इतने शुद्ध हृदय के थे, इतने सीधे थे, इतने ईमानदार थे, सभी प्रजा को पता चला कि ये राजा के, राज्य के और प्रजा के हित के लिए कार्य करते हैं और स्वार्थ के लिए बिल्कुल तनिक भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए सारी प्रजा इन मंत्रियों के प्रति पूरा विश्वास रखते थे। आजकल कोई प्रजा है जो मंत्रियों के प्रति श्रद्धा रखती है? नहीं, कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। सब जानते हैं कि अभी कम से कम दोषी लोग कौन हैं जिनको हम वोट दे सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रजा के हृदय में मंत्रियों के प्रति इतनी श्रद्धा थी इसलिए प्रजा भी कभी भी कानून नहीं तोड़ती थी। और इसलिए बताया जाता है कि सारे अयोध्या राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था किसी दूसरे के पत्नी से व्यवहार रखता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि मन से अशांत था। सभी लोग शांत चित्त के थे और इस तरह से ये मंत्रीगण जो थे हमेशा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनके अंदर सारे अच्छे गुण थे और नीति शास्त्र इत्यादि से वो अच्छी तरह से निपुण थे। वो सब कुछ जानते थे, राजनीति के कारोबार कैसे संभालना, खुद सारे शस्त्रों को अस्त्रों को कैसे चलाना वो भी जानते थे। शूरवीर थे, कभी युद्ध में आगे जाने के लिए हिचकिचाते नहीं थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि थोड़े साल पहले की भी बात है, जैसे बीरबल थे। बीरबल भले एक यवन राजा के दरबार में थे लेकिन ब्राह्मण कैसे थे, किस तरह से चतुर हुआ करते थे, किस तरह से उपयुक्त और प्रामाणिक उपदेश देते थे राजा को, ये बीरबल के उदाहरण से भी हम देख सकते हैं। और हालांकि बीरबल मंत्री थे, युद्ध करने से हिचकिचाए नहीं। ऐसे बताया जाता है कि बीरबल की मृत्यु हुई काबुल के पास अफगानिस्तान में युद्ध करते हुए, जो उनके साथ में एक यवन सेनापति था अकबर महाराज का, तो इसने धोखा दिया और अफगान जो सेना थी वो उनके हवाले इनको कर दिया। इसलिए बीरबल ऐसे गद्दारी करके बीरबल की हत्या होगी। कहने का मतलब है कि बीरबल जैसे मंत्री जो ब्राह्मण थे वो भी आगे चल के युद्ध करते थे, लेकिन आजकल अभी नहीं होता है ऐसा। मंत्री जो होते हैं वो पीछे आराम से बैठते हैं वातानुकूलित वातावरण में, और फिर सब आदेश देते हैं फोन के ऊपर, ऐसा करना चाहिए, इतने लोगों को वहां युद्ध करने के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन ये मंत्री शस्त्रज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, और शूरवीर थे, बुद्धि से तेज थे, तीव्र थे, इस तरह से ऐसे मंत्री थे। तो ऐसे मंत्रियों की सहायता से दशरथ महाराज राज्य चलाते थे। तो सोचिए, अगर राजा दशरथ महाराज जैसे हो और मंत्री इनके जैसे हो जो दशरथ महाराज के दरबार में थे, तो फिर क्या प्रजा भला दुखी रह सकती है? यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे जैसे मंत्री होंगे वैसे प्रजा होगी। तो इस तरह से अयोध्या के निवासी बड़े शांत थे, सुखी थे, उनको कोई कष्ट नहीं था, और इस तरह से समय बीतता गया। लेकिन हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी दशरथ महाराज के हृदय में एक दुख की बात थी। उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी एक चीज नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट है, मेरी प्रजा धर्मपरायण है, सुखी है, आप सब भी धर्मपरायण हो, निपुण हो, विशारद हो, हर कार्य में आप सारे कारोबार को संभाल रहे हो बहुत अच्छे ढंग से, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, और जब तक पुत्र नहीं होगा तो आगे चल के राज्य को कौन संभालेगा, और दूसरी बात, मेरे मृत्यु के बाद में श्राद्ध पिंड तर्पण कौन अर्पण करेगा, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति कौन दिलाएगा, अगर भले वो पाप करके वो नीचे भी चले गए हो, नीच योनि में, या अधो गति उनकी हो भी गई है, तो उनका उद्धार कौन करेगा। तो इस तरह से दशरथ महाराज सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में गौर विचार किया है और ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करने से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और इस तरह से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। जब सारे अपने मंत्रियों के सामने, जैसे कि वशिष्ठ मुनि इत्यादि, उनके सामने उन्होंने ये विचार रखा, उन्होंने कहा साधु साधु, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना आपके लिए उचित है। तो उस समय उन्होंने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र, हे मंत्री सत्तमा, मंत्रियों के सर्वश्रेष्ठ, कृपा करके जो भी हमारे दरबार के ऋषि मुनि हैं, कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, उनको यहां पर बुलाइए, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। जब सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए मंत्रियों के संग, अमात्य के संग, तो जब दशरथ महाराज ने अपने विचार को प्रस्तुत किया तो सभी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, यही करना चाहिए। और उन्होंने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक यज्ञ स्थली तैयार की जाए और वहां पर ये यज्ञ की सामग्री एकत्र करके वहां पर लिए जाए। तो दशरथ महाराज ने फिर यही आदेश अपने दूसरे मंत्रियों को दिया कि हमारे गुरुजनों के आदेश के अनुसार सरयू नदी के उत्तरी भाग में एक शहर बनाया जाए जहां पे ये यज्ञ संपन्न होगा, और इसके लिए जो भी सामग्रियों की आवश्यकता है वो तैयार किए जाएं, वो जगह जगह से, प्रांत प्रांत से वो प्राप्त किए जाएं और तैयारी की जाए, और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ के लिए जो में अश्व है, जो घोड़ा है, वो भी तैयार किया जाए और घोड़े को छोड़ा जाए। अश्वमेध यज्ञ में ऐसे होता था कि पहले किसी विशेष घोड़े को पकड़ के उसे छोड़ा जाता था और उस घोड़े के साथ में 400 क्षत्रिय राजकुमार उसके संरक्षण के लिए हमेशा जाते थे और उनके पीछे पीछे एक सेना जाती थी, और जहां घोड़ा भ्रमण करते रहता था तो उस भूमि के अगर कोई राजा या कोई और थे, अगर वो घोड़े भेजने वाले राजा के शरण में नहीं जाते तो उनको युद्ध करना पड़ता था। तो अगर जैसे दशरथ महाराज ने घोड़ा भेज दिया तो सारे राजाओं ने स्वीकार किया कि दशरथ महाराज ही सबसे बड़े महाराज हैं और हम छोटे छोटे राजा उनकी सेवा करेंगे, उनको कर देते रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे। तो किसी ने घोड़े का विरोध नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने विरोध किया होता तो वहां युद्ध हो जाता। तो इस तरह से घोड़ा इधर उधर भ्रमण कर रहा, भ्रमण करने के लिए दशरथ महाराज ने आज्ञा दे दी और सारे क्षत्रिय राजकुमार थे उनको भी घोड़े के संग में जाने का आदेश दिया। और उस घोड़े के साथ साथ में कई पुरोहित भी जाते थे। घोड़े के हर कदम लेने पर यज्ञ में आहुतियां अर्पण किए जाते थे, तो ऐसे आहुतियां अर्पण करने के लिए भी ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि को दशरथ महाराज ने कहा कि कृपा करके ऐसे पुरोहितों को भी तैयार कीजिए और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जाए। और उन्होंने कहा ब्राह्मणों से कि आप अच्छी तरह से इस यज्ञ के लिए तैयारी कीजिए, क्या सही विधि विधान है, क्या मंत्रों को बोलना है, किनको अच्छी तरह से कैसे इनका उच्चारण करना है, क्या पद्धति होगी, ये सब आप अच्छी तरह से इसको आप बता दीजिए। क्योंकि जो ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण सही नहीं किया पहले काल में और ऐसे विधि विधानों का पालन अच्छे ढंग से न करते हुए या मंत्रों का गलत उच्चारण करने से उनको राक्षस का शरीर मिल गया है और इसलिए वो हमेशा आतुर रहते हैं यज्ञ स्थली में ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ पे कोई चूक भूल हो रही है कि नहीं। अगर वहां पर कोई भूल हो जाती है तो फिर तुरंत वो वहां पे यज्ञ का फल खाने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यज्ञ करना बहुत गंभीर बात थी। ऐसा नहीं जैसे कि हम उस दिन हमने किया, हम थोड़े छोटा इतना छोटा सा यज्ञ कुंड करके थोड़ी बहुत स्वाहा स्वाहा हमने कर लिया और ये यज्ञ हो गया। ये कलयुग का यज्ञ है, छोटा सा यज्ञ है, लेकिन त्रेता युग में जो यज्ञ हुआ करते थे वो इतने विशाल हुआ करते थे। आगे चल के वाल्मीकि रामायण से हम कथा जब करेंगे, उस प्रसंग जब आएगा, तो उसके लिए पूरा एक घंटा लगेगा समझाने के लिए कि यज्ञ कितना बड़ा था और यज्ञ में क्या क्या व्यवस्था थी, क्या हो रहा था। तो इस तरह से सारे यज्ञ में जो सारे चीजें होनी थी, विधि विधानों का पालन करना था, मंत्रों का उच्चारण करना था, सामग्री को कैसे आहुति में के रूप में प्रदान करना था, अर्पण करना था, दशरथ महाराज ने कहा वशिष्ठ मुनि से कि कृपा करके आप देखें कि इस यज्ञ में कोई भूल चूक न हो, क्योंकि अगर ऐसे हो तो फिर राजा के ऊपर दोष आएगा और ब्राह्मणों को भी राक्षस का शरीर मिल जाएगा। तो इस तरह से दशरथ महाराज ने आदेश दिया। इस तरह से ये सुनकर सारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने कहा तथास्तु और सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। तो दशरथ महाराज ने फिर अपने वो महल में चले गए, अपने पटरानियों के दरबार में चले अंदर और वहां जाकर फिर अपने रानियों से उन्होंने कहा कि आप यज्ञ के लिए तैयारी करो, हम पुत्र काम यज्ञ करने वाले हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो इस बात को सुनकर सारे जो रानियां थी, प्रमुख रानियां, बड़े प्रसन्न हुई और प्रसन्न चित्त से वो भी तैयारी करने लगे। उनको क्या तैयारी करनी पड़ती थी वो आगे चल के हम भी देखेंगे धीरे 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 से। तो उस समय जब सुमंत्र जो कि उनके प्रमुख मंत्री थे, उनको पता चला कि राजा दशरथ अभी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले हैं, तो अकेले में वो महाराज दशरथ के पास में आए और कहने लगे कि हे राजा दशरथ, मैंने बहुत समय पहले एक पौराणिक कथा सुनी थी और वो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और ये पौराणिक कथा वास्तव में सनत कुमार ऋषि ने अन्य संतों को बताया था बहुत साल पहले। कितने साल पहले? जो पिछले दिव्य युग का सतयुग था उसमें। तो देखिए चार युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो रामायण की कथा कौन से युग में हुई थी? त्रेता युग में। तो ये पौराणिक कथा सनत कुमार ऋषि ने कब बताई थी? जिस त्रेता युग में रामायण की कथा हुई उसके पहले जो सत्ययुग हुआ उसमें नहीं, उसके पहले के चतुर्युग में, अर्थात जिस त्रेता युग में राम कथा हुई, रामलीला हुई, उसके पहले आया एक सत्ययुग, फिर उसके पहले कलयुग, उसके पहले फिर द्वापर, उसके पहले त्रेता और उसके पहले सत्ययुग। तो तो उस सत्ययुग में यह घटना हुई थी और सनत कुमार ने यह कथा की थी, तो मैं आपको वो कथा बताने जा रहा हूं। तो इस कथा में सनत कुमार ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि आपको हे महाराज दशरथ चार पुत्र होने वाले हैं, और इसकी कथा इस प्रकार है कि एक पुत्र काश्यप मुनि के पुत्र को होगा। काश्यप मुनि ये भी एक उपदेशक मंत्री थे, ऋषि थे महाराज दशरथ के दरबार में। तो सनत कुमार ऋषि ने करोड़ों 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 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ, और दशरथ के दरबार में एक मंत्री होंगे जिनका नाम होगा काश्यप, जो कि कश्यप मुनि के पुत्र होंगे, और ये काश्यप मुनि के पुत्र होंगे जिनका नाम होगा ऋषि विभांडक, और ये विभांडक ऋषि के पुत्र होंगे जिनका नाम होगा ऋष्य श्रृंग। अभी ऋषि विभांडक इस ऋष्य श्रृंग को लेकर वन में अकेले रहेंगे, और बचपन से ही ऋषि श्रृंग को वहां उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे। इस तरह से ऋषि श्रृंग को उनके पिता के अलावा और किसी भी मनुष्य या पशु से मुलाकात नहीं होगी उसकी। वो केवल वन में रहेगा, तपस्या करेगा, वेदों का पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, पठन पाठन यजन याजन यही उसका काम रहेगा, और ऋषि विभांडक उसका अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, उसको अच्छी तरह से ब्राह्मण के धर्म में, वैदिक धर्म में, आध्यात्मिक मार्ग में उसको उपदेश देंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि वहां के पास में एक प्रांत है जिसका नाम होगा अंग, और अंग देश के राजा होंगे महाराज रोमपाल, और महाराज रोमपाल के कोई गलत काम करने हेतु वो पाप उनको लग जाएगा, और उनको लगने की वजह से सारे राज्य को लग जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि जब कोई नेता या राजा कोई पाप करता है तो इस पाप का फल सारे प्रजा को, बल्कि सारे राज्य को भुगतना पड़ता है। ये कितना महत्वपूर्ण है हमें समझना। तो इस तरह से महाराज रोमपाद के कोई पाप या कोई गलत काम करने की वजह से वहां सारे अंग देश में सूखा पड़ जाएगा, और इतना भीषण भयंकर सूखा पड़ेगा कि लोग भूख के मारे तड़पेंगे। तो उस समय रोमपाद महाराज अपने ब्राह्मण उपदेशों को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आप सब जानते हैं कि मेरे हाथों से क्या गलत काम हुए थे, तो मैं इनके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि इन पापों की वजह से सारे मेरे राज्य में कितना उपद्रव मचा हुआ है, कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है मेरी प्रजा को, तो इसके लिए क्या उपाय है, आप कुछ न कुछ ढूंढ निकालिए। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसे सुना तो उन्होंने थोड़ा सोचा, आपस में उन्होंने सलाह मशवरा किया, और फिर उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारे मन में इस समस्या का समाधान एक ही तरह से हो सकता है, और वो है कि यहां से करीब, ज्यादा दूर नहीं, एक वन है श्रृंगवरपुर, और वहां पर ऋषि श्रृंग नाम के ऋषि, जो कि ऋषि विभांडक के पुत्र हैं, वो वहां रहते हैं। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसके पिता ने बहुत ही सावधानी से उसको उपदेश दिया है, उसने किसी भी दूसरे पुरुष और स्त्री को देखा नहीं है, केवल अपने पिता को जानता है और किसी को नहीं जानता। वो बहुत शक्तिशाली है अपने आध्यात्मिक बल से। तो इस तरह से अगर आप इस ऋषि श्रृंग ऋषि को यहां पर ले आएंगे, तो फिर जब यहां लेकर आपकी पुत्री शांता से उसका विवाह कराएंगे, तब आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। तो सोचने लगे महाराज रोमपाद कि कैसे ये संभव हो सकता है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उपदेशकों को, आमंत्रियों को बुलाया, और कहा कि कृपा करके आप जाकर श्रृंगवेरपुर से आप ऋषि श्रृंग नाम के ऋषि को, ब्राह्मण को यहां ले आइए, ताकि मेरी पुत्री शांता से विवाह करा के मैं अपने प्रजा का जो कष्ट है उसको दूर कर पाऊं। वास्तव में ये शांता ये दशरथ महाराज की पुत्री थी, दशरथ महाराज को जब पुत्री हुई थी उस समय रोमपाद महाराज जो कि दशरथ महाराज के पुत्र थे उन्होंने दशरथ महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है तो कृपा करके मुझे इस पुत्री को दत्त में लेने के लिए स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से रोमपाद महाराज ने शांता को अपने गोद में ले लिया और इस तरह से उस दिन से शांता रोमपाद महाराज के घर में रहने लगी और इस समय वो नवयुवती बन गई थी। तो सनत कुमार ऋषि ने ये सब भविष्यवाणी की थी उस समय पिछले दिव्य युग के सत्ययुग में। तो कहने लगे कि जब रोमपाद महाराज ने अपने मंत्रियों से ऐसे कहा तो सभी लोग हिचकिचाए, घबरा गए। वो कहने लगे कि महाराज हम हिचकिचा रहे हैं ये कार्य करने के लिए, क्योंकि ऋषि विभांडक को अगर पता चले कि हमने उनके पुत्र को उठाकर हम ले आए हैं, जिस पुत्र को वो हर दृष्टि से बचाकर रख पाए हैं, अभी तक उनके पुत्र ने आज तक एक महिला को स्त्री को देखा नहीं है, और अगर हम उसको उठाकर ले आएंगे तो हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे और ऋषि मुनियों का ब्राह्मणों का श्राप स्वीकार करना तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, तो हम हमारे हृदय में थोड़ी बहुत भीति है, भय है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ युक्ति निकालेंगे, कुछ तरकीब सोचेंगे, युक्ति से किसी न किसी तरह से इस ऋष्यशृंग ऋषि को यहां पर आपके राज में ले आएंगे, हम कल आपको ये तरकीब बताएंगे। तो सारे ऋषि मुनि और सारे अमात्य मंत्री इत्यादि फिर आपस में सलाह मशवरा करने गए और अगले दिन वो आए महाराज रोमपाद के पास में और कहने लगे कि हमने एक तरकीब सोची है कि हम इस युक्ति से गणिका स्त्री इनके माध्यम से हम ऋष्यशृंग ऋषि को यहां आकर्षित करेंगे। और उन्होंने सारी योजना रोमपाद महाराज को बताई। तो रोमपाद महाराज ने कहा ठीक है जाओ। तो उस समय ऋष्यशृंग ऋषि अपने आश्रम में बैठते थे, अब तपस्या कर रहे थे, अपने आश्रम के कार्य कर रहे थे और ये स्त्रियां यहां आई आश्रम के पास में, थोड़ी दूरी में वो रही। और जब ऋष्यशृंग ऋषि इधर उधर घूम रहे थे ऐसे ही जंगल के सौंदर्य को देखते हुए और कोई काम से जंगल की जड़ी बूटियां वगैरह लाने के लिए गए थे, तो अचानक उन्होंने इन दूसरे लोगों को देखा। और क्योंकि इन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि ने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा था और खास करके किसी स्त्री को नहीं देखा था, वो सोचते थे कि सभी लोग पुरुष ही होते हैं, इतने मासूम थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। तो उन्होंने इनको देखा और उन्होंने कहा महोदय, पुलिंग से उनका स्वागत किया क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि स्त्री नाम की कोई होती है कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यहां से पास में आए हैं और हम यहीं पे घूमते घूमते आए, तो आप कौन हैं और आपका आश्रम क्या है और आप क्या करते हैं, किस तरह से आपका पालन भरण पोषण होता है यहां पर वन में, आप किस तरह की तपस्या करते हैं? तो जिस मधुर स्वर में वो बोल रही थी, ऋष्यशृंग ऋषि के हृदय में एक प्रकार का आकर्षण जागृत हुआ, लेकिन ऋष्यशृंग ऋषि को पता नहीं चला कि आकर्षण क्यों हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे ऋषि, हे ऋषिगण, आप सब आइए। उन्होंने सोचा ये भी कोई ऋषिगण है जंगल के, दूसरे जंगल से आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिगण, मेरे आश्रम में आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, मेरे आश्रम में आकर कृपा करके फल फूल जड़ी बूटियां स्वीकार कीजिए। तो वो आए और फिर ऋष्यशृंग ऋषि ने सबके हाथ धोए, सबके पैर धोए और इस तरह से धोकर उनका स्वागत किया और फिर कहा जब तक ये इन्होंने थोड़ी भेंट दी और जल्दी से वहां से निकल गए। और भेंट में क्या दिया उनको? सुंदर सुंदर तरह के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन दिए, नाना प्रकार के मिठाइयां और अलग अलग तरह के पदार्थ। अभी ऋष्यशृंग मुनि तो हमेशा बचपन से जन्म से जंगल में थे, कभी उन्होंने फल के अलावा और जड़ी बूटियों के अलावा कुछ खाया नहीं था। और ये सब चीजें क्या है उनको पता ही, इन्होंने सोचा ये भी थोड़े फल ही है, नए प्रकार के फल हैं, किसी दूसरे पेड़ पे होते होंगे जो हमारे जंगल में नहीं मिलते, होगा कि ये इन ऋषियों के जंगल में ऐसे ये जो है फल पेड़ पे मिलते होंगे। तो उन्होंने कहा कि इतना स्वादिष्ट मीठा मीठा ये सब क्या है, अपने जंगल में तो ऐसा नहीं मिलता। और फिर ये भी जो ऋषि हमारे पास आए थे दिखने में इतने आकर्षक थे और इनके जो स्वर है इतना मधुर है, न जाने क्यों मेरा हृदय इनके प्रति इतना आकर्षित हो रहा है, तो और उनको बिठाना चाहते थे। लेकिन ये स्त्रियां इधर उधर देख रही थी, कहीं विभांडक ऋषि आ जाए और उनका श्राप दे दे तो बड़े घबरा रहे थे। तो जल्दी जल्दी से कहा उन्होंने कि हे ऋषि मुनि, हम निकल रहे यहां से और कभी आपके पास आएंगे और ऐसे ही फल फूल लेकर आएंगे आपके लिए। और फिर उन्होंने वहां से जल्दी से चले गए। और जब चले गए तो ऋषि सिंह ऋषि के मन में हमेशा विचार थे कि मेरे नए ये ऋषि मुनि है, ये कौन है, फिर से मैं इनको मिलना चाहता हूं। और फिर वो स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, उसका स्वाद तो हमें सारा दिन भर रात भर उनके मुंह में था। कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाए नहीं थे, तो इंतजार करते रहे कि कब आएंगे वो, कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसे रात बीत गई। फिर अगले दिन भी ऋषि श्रृंग ऋषि घूमते फिरते जानबूझकर उसी स्थल में गए जहां इन महिलाओं के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी पिछले दिन, और ठीक वहां पर ये लोग आए। तो बातचीत करते कर उनको और भी खिलाया, उनको और अच्छा लगा। और फिर उन्होंने कहा ऋषि श्रृंग ऋषि ने कि आपका आश्रम कहाँ है। तो उन स्त्रियों ने पूछा, हमारे आश्रम में आना चाहते हैं आप? कहा हाँ आना चाहता हूँ, मुझे ले जाओ। तो पहले तो थोड़े घबरा रहे थे कि यहाँ पास में कहीं विभांडक ऋषि हो तो नहीं इनके पिता। तो जब देखा कि ऋषि बाहर गए कोई काम से, तो जल्दी से ले गए ऋषि श्रृंग ऋषि को, नौके में बिठाया और नदी पार करके अंगराज में ले लिया। और जैसे ही ऋषि श्रृंग ऋषि ने अपने चरण कमल अंगराज में रखे, वैसे ही ऊपर इंद्रदेव ने वर्षा प्रचुर मात्रा में करना आरंभ कर दिया। अब यह प्रश्न आ सकता है कि ऋषि श्रृंग ऋषि के कदम रखने से ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मचर्य से बहुत बल मिल जाता है। जिस तरह से स्त्री को शक्ति मिलती है पतिव्रता होने से, उसी तरह से पुरुष को शक्ति मिलती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो इस तरह से क्योंकि ऋषि श्रृंग ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनके अंदर इतना बल था, आध्यात्मिक बल, जो कि उनको भी नहीं मालूम था कि मेरे पास ऐसा बल है। वो तो बड़े मासूम थे, बचपन से ही वो जंगल में पाले पोसे हुए थे। और फिर वर्षा जब होने लगी साथ साथ, तो उनको महाराज रोमपाद के दरबार में महल में ले जाया गया। और बड़े प्रसन्न चित्त से रोमपाद महाराज ने शांता उनके पुत्री का हाथ ऋषि श्रृंग ऋषि के हवाले कर दिया, और इस तरह से दोनों का विवाह हुआ। और फिर ऋषि श्रृंग ऋषि की सेवा करते हुए उनके चरण कमलों को धोया, बहुत से उनकी सेवा की और उनसे एक वरदान मांगा। रोमपाद महाराज ने कहा, हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि कृपा करके आप हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होइए, क्योंकि हमने युक्ति से हम यहां पर आपको ले आए हैं, टेढ़े तरीके से ले आए हैं। और कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके पिता ऋषि विभांडक भी हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे। हम ब्राह्मणों के ऋषियों के श्राप से बहुत डरते हैं, तो कृपा करके ये आशीर्वाद दीजिए। और ये आशीर्वाद उनको मिल गया। तो रोमपाद महाराज खुश हो गए कि अभी सारे प्रजा के कष्ट दूर हो गए, अभी ऋषि श्रृंग के पास क्या था, केवल जड़ी बूटी और फल थे, बस और कुछ नहीं था। घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं था, देखिए कुछ नहीं। पढ़ते हैं जैसे कि स्वयंभू मनु ने अपने पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से कराया। कर्दम मुनि भी इसी तरह से जंगल में रहने वाले वैरागी थे, तपस्वी थे। और स्वयंभू मुनि ने आकर कहा कि आप ही मेरे पुत्री के लिए योग्य हैं। देवहूति तो राजा की पुत्री थी, राजा के बड़े बड़े महल में रहने के आदि थी, लेकिन फिर भी देवहूति भी हिचकिचाई नहीं। पिता से यही नहीं कहा, पिताजी कौन से घर में ले जा रहे हैं, वहां टीवी भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ मुझे अच्छे घर में ले जाइए जहां मैं बाजार में गाड़ी पर बैठ के जा सकती हूँ, जहां मेरे अच्छे अच्छे सिनेमा देख सकती हूँ, नहीं, देवहूति ने ऐसे नहीं कहा। देवहूति भी जानती थी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जिसके अंदर आध्यात्मिक बल है, जो वैष्णव है, जो भक्त है, वही प्रामाणिक वर हो सकता है या प्रामाणिक पत्नी हो सकती है। तो इस तरह से ऋषिशृंग ऋषि थोड़े समय के लिए घर जमाई बने अपने वो द्रोणपाद महाराज के दरबार में, उनके महल में, राज में रहने लगे। तो ऐसे काफी समय बीत गया। तो ये सनत कुमार की कथा अभी तक चालू है, ये भविष्यवाणी चल रही है सनत कुमार की, और सुमंत्र ये दशरथ महाराज को सुना रहे हैं। और फिर सुमंत्र ने कहा कि सनत कुमार ऋषि ने ऐसे कहा कि दशरथ महाराज फिर आगे चल के वो अश्वमेध यज्ञ की इच्छा रखेंगे अपने हृदय में, और फिर उनको बताया जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपको ऋषिशृंग राम के ऋषि को आपके राज्य में लाना चाहिए और उनको प्रमुख पुरोहित बनाना चाहिए, आचार्य बनाना चाहिए, तब आपका यज्ञ सफल होगा, यशस्वी होगा। और फिर दशरथ महाराज जाएंगे रुमपाद महाराज के पास में, जो कि उनके मित्र हैं, और वहां पर जाकर उनसे वो निवेदन करेंगे कि कृपा करके शांता को और ऋषिशृंग को हमारे राज्य में थोड़े समय के लिए भेज दीजिए। और रुमपाद महाराज तुरंत इसको, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। ऋषिशृंग ऋषि आएंगे और वहां पर रह के फिर एक पुत्र काम यज्ञ होगा, और उस यज्ञ के फलस्वरूप महाराज दशरथ को चार जो है बड़े शक्तिशाली वीर पुरुष, चार पुत्र होंगे। तो सुमंत्र ने कहा कि हे महाराज दशरथ, ये आपके बारे में भविष्यवाणी है जो कि पिछले दिव्य युग के त्रेता सत्ययुग में की गई थी, और मैंने जो पौराणिक कथा बहुत साल पहले सुनी थी। तो आपने जो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा रखी है, ये बहुत अच्छी बात है, और आपका प्रयास निश्चित रूप से सफल रहेगा। तो इस तरह से दशरथ महाराज ने जब ये सुन लिया तो बड़े प्रसन्न हुए, और तुरंत अपने मंत्रियों को, उपदेशकों को बुलाया, और सुमंत्र ने जो उनसे कहा था वो उनको सुनाया, और फिर अपने मंत्रियों के साथ में वो रुमपाद महाराज के राज्य अंगराज में, अंग देश में रवाना हुए वहां के लिए। वहां रुमपाद महाराज ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, और स्वागत के कई दिनों तक वहां रहे। जब महाराज दशरथ ने ऋषिशृंग ऋषि को देखा, नीचे झुककर उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, और जब रुमपाद महाराज ने बताया ऋषिशृंग को कि ये वास्तव में शांता के पिता है, ये तुम्हारी पत्नी के पिता वास्तव में ये है, तो ऋषिशृंग ऋषि ने भी बहुत झुककर दशरथ महाराज का प्रणाम किया। और इस तरह से कई दिनों तक दशरथ महाराज वहां रुमपाद महाराज के दरबार में रहे अतिथि के रूप में, और दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे समय बिताते थे। और फिर दशरथ महाराज ने कहा कि हे रुमपाद महाराज, मेरी इच्छा यह है कि ऋषिशृंग ऋषि और शांता को कृपा करके थोड़े समय के लिए मेरे राज में आप भेज दीजिए। रुमपाद महाराज ने कहा तथास्तु, और ऋषिशृंग ऋषि से कहा कृपा करके आप भी पत्नी सहित राजा दशरथ के साथ में जाए। इस तरह से बड़े धूमधाम से ऋषिशृंग ऋषि को अयोध्या नगरी में लाया गया। राजा दशरथ ने आगे संदेश भेजा कि सारे अयोध्या नगरी को अच्छे तरह से सजाओ, सब जगह अत्तर गुलाब का जल छिड़काओ, सब जगह सुंदर सुंदर सुगंधित फूल होने चाहिए, सब जगह अलग अलग तरह के दीवार द्वार खड़े कर दीजिए। तो इस तरह से दशरथ महाराज ने खबर पहुंचाया, और ऋषिशृंग ऋषि अयोध्या नगरी में आए, बड़े धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। सारे दशरथ महाराज की पत्नियों ने, रानियों ने शांता का स्वागत बड़े अच्छे तरह से किया। ऋषिशृंग ऋषि और शांता बड़े खुशी के साथ में महाराज दशरथ के महल में रहे। और फिर एक दिन जब समय आया पुत्र काम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए, जब कई साल, एक साल पूरा बीत गया था, तब दशरथ महाराज ने ऋषिशृंग ऋषि के सामने यह प्रस्ताव रखा यज्ञ के लिए। और फिर ऋषिशृंग ऋषि ने क्या कहा और आगे चल के कैसे घटनाएं हुई, फिर यज्ञ संपन्न कैसे हुआ और कैसे चार पुत्रों का जन्म हुआ, ये कभी और चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।